चैप्टर 6 उक्ति। कथन वाणी के माध्यम से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति। संस्कृत के समन्वयशील आचार्य भोजराज ने उक्ति के आधार पर तीन प्रकार के वाङ्मय की स्थिति मानी है, स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति और रसोक्ति। कहना न होगा कि उपर्युक्त तीनों ही प्रकार की उक्तियां काव्योक्ति की सीमा में आती हैं। आचार्य शुक्ल ने उक्ति और सुक्ति में अंतर किया। उनके अनुसार हृदय में भाव जागृत करने वाली या किसी वस्तु की मार्मिक भावना में लीन करने वाली उक्ति ही काव्य है। जो उक्ति रचना वैचित्र्य, कथन के चमत्कार या कवि की निपुणता को प्रकट होती है वह सुक्ति होती है। तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल रसोक्ति को ही विशेष महत्व देते हैं। उदाहरण, बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह तो काव्य है। जो उक्ति केवल कथन से ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र, चमत्कार कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे वह सुक्ति है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 171। उक्ति वैचित्र चमत्कारपूर्ण कथन किसी वस्तु का साधारण लौकिक दृष्टि से भिन्न अलौकिक एवं वैचित्रपूर्ण कथन ही उक्ति वैचित्र है। वक्रोक्ति सिद्धांत में उक्ति वैचित्र को काव्य का जीवन माना गया है। उदाहरण द्वितीय, उक्ति वैचित्र या अनूठेपन पर जोर देने वाले हमारे यहाँ भी हुए हैं और यूरोप में भी आजकल बहुत जोर पर हैं, जो कहते हैं कि कला या काव्य में अभिव्यंजना ही सब कुछ है, जिसकी अभिव्यंजना की जाती है वह कुछ नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 95। तृतीय उदाहरण, इसी बात को देखकर अनुभूति को तीव्र करने के लिए व्यंजना के असामान्य प्रयोग को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया है कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र ही काव्य का नित्य लक्षण है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 34। उक्ति वैचित्र पूर्ण मुक्तक। ऐसे मुक्तक जिनमें कौतूहल वृत्ति को तुष्ट करने वाली अनूठी उक्तियों को विशेष महत्व दिया जाता है। उदाहरण, राजाओं की सभा में जाकर जब से कवि लोग उनके मन बहलाव को काम करने लगे तब से हमारे साहित्य में उक्ति वैचित्र का प्रचार बढ़ने लगा। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 91। उग्रता, उपमान आदि से उत्पन्न निर्दयता ही उग्रता है। उग्रता, उदाहरण, उग्रता सच पूछिए तो क्रोध का ही एक अवयव है, पर कभी कभी सर्वांगपूर्ण क्रोध न प्रकट करने पर भी उसका आविर्भाव होता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 220। नोट, आचार्य शुक्ल का मत है कि यदि उग्रता संचारी भाव के रूप में मान्य हो सकती है तो मृदुलता या कोमलता को भी संचारियों में समाविष्ट किया जाए। श्रृंगार और करुण दोनों रसों में मृदुलता संचारी होकर आ सकती है। उत्प्रेक्षा, यहाँ भी बात बढ़ाकर की जा सकती है, किंतु उपमेय और उपमान में अभेद निर्दिष्ट या सिद्ध नहीं होता, वरन उनके संभावना मात्र की जाती है। आचार्य शुक्ल ने अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा में सिद्ध उपमेय और उपमान की अभेदता और साध्य उपमेय और उपमान की अभेदता की संभावना का भेद माना है। उनका मत है कि साहित्य दर्पणकार मतानुसार है। साहित्य दर्पणकार ने कहा है, सिद्धत्वे अध्यवसाय स्याति अतिशयोक्ति निर्गद्यते। अध्यवसाय को स्पष्ट करते हुए साहित्य दर्पणकार ने कहा, विषय निगरणेना भेद प्रतिपत्ति विषयिणो अध्यवसायः, अर्थात विषय के निगरण पूर्वक उसके साथ विषयी उपमान की अभेद प्रतिपत्ति अध्यवसाय है। इसी संदर्भ में उत्प्रेक्षा से अतिशयोक्ति का अंतर बताते हुए साहित्य दर्पणकार ने कहा है, अस्य चोत्प्रेक्षायां विषयिणो निश्चितत्वेन निर्देशात साध्यत्वम् इह तु निश्चितत्वेनैव प्रतीति इति सिद्धत्वम्। साहित्य दर्पण दशम परिच्छेद। अर्थात यह अध्यवसाय अभेद प्रतिपत्ति उत्प्रेक्षा में भी रहा करता है, किंतु सिद्ध रूप का न होकर साध्य रूप का ही होता है। उदाहरण, अत्युक्ति या अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा में सिद्ध और साध्य का भेद होता है। उत्प्रेक्षा में अध्यवसाय साध्य संभावना या संवेदना के रूप में होता है और अत्युक्ति या अतिशयोक्ति में सिद्ध। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 37। उदाहरण पर उनकी यह उत्प्रेक्षा चित्रकूट के वृक्षों, लताओं, पक्षियों आदि को लेकर होली के उत्सव की उत्प्रेक्षा भी उल्लास सूचक है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 90। तृतीय उदाहरण, सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा का व्यवहार अधिक मिलता है, जैसी ग्रंथावली भूमिका, पृष्ठ संख्या 108। सदानंद सिय सुनि पाय परि परिहारी माल, सिय पिय हिय सोहसो भई है, मानस ते निकसी विशाल सुतमाल, पर मानहु मराल पांति बैठी बनी गई है। इस उत्प्रेक्षा में श्री राम के शरीर और तमाल में श्यामता के विचार से ही बिंब प्रतिबिंब भाव है। आकृति का सादृश्य नहीं है, पर मराल पांति और जयमाल में वर्ण और आकृति दोनों के सादृश्य से बिंब प्रतिबिंब भाव बहुत पूर्णता को पहुंचा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 96। एक और सुंदर उत्प्रेक्षा लीजिए, लता भवंते प्रगट भेद तेही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। इस उत्प्रेक्षा में मेघखंड के बीच से प्रकट होते हुए चंद्रमा का मनोरम दृश्य लाया गया है, जो प्रस्तुत दृश्य की मनोहरता के अनुभव को बढ़ाने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 97। उत्साह, साहित्य दर्पण कांड के अनुसार कार्यों के आरंभ में हृदय के स्थैर्यशाली आवेश या उद्वेग का नाम उत्साह है। कार्यारंभेषु संरंभ स्थेयात् उत्साह उच्यते, पृष्ठ संख्या 228। नोट, आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि प्रथम भाग में उत्साह पर स्वतंत्र विचार किया। उनके अनुसार साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 6। वे यह जानते हैं कि उत्साह में साहस, कष्ट सहने की दृढ़ता और कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद, इन सब का संश्लेष होता है। वे उत्साह को एक यौगिक भाव मानते हैं। उत्साह में जो आनंद का तत्व होता है, वह दुष्कर कार्य में तत्पर होने के लिए कार्य पूर्ण होने तक बराबर बना रहता है। वस्तुतः सच्चे उत्साह में जो आनंद होता है, वह कर्म भावना प्रसूत होता है, फल भावना प्रसूत नहीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर के उत्साह का विषय विजय विघातक कर्म या युद्ध ही रहता है, विजेतव्य नहीं। विजेतव्य को जो आलंबन कहा गया है, वह इसलिए कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थित रहता है। उदाहरण, अतः हमारी समझ में उत्साह का आलंबन कोई विकट या दुष्कर कर्म ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 65। उदाहरण, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 6। उदात्त, लोकोत्तर वैभव या महनीय चरित पुरुषों का वर्णन उदात्त अलंकार है। इसमें भी अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं हो सकता, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसे अलंकार कोटि में स्थान नहीं दिया। प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ सकते हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार कहे जा सकते हैं। जैसे प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उद्दात, अत्युक्ति इत्यादि। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 51। उदासीन भाव, उपस्थित प्रसंग के प्रति निरपेक्षता या उदासीनता का भाव प्रकट करना। उदाहरण, ऐसे अवसर पर सीता ऐसी गंभीर हृदय देवी का यह उदासीन भाव प्रकट करना कितना स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 67। नोट, आचार्य शुक्ल का मत है कि काव्य में उदासीनता व्यक्त होती है, वह खेद व्यंजक ही होती है, वह वास्तविक उदासीनता नहीं होती। वे कहते हैं उसे विषाद, क्षोभ आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक शैथिल्य समझिए। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 68। इसी प्रकार की खेद व्यंजक उदासीनता का परिचय मंथरा ने कैकेयी को समझाते हुए यह कहकर दिया कि कौन रिप हो हूँ हमाई का हानि, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। सूरदास ने भी इसका आभास यशोदा द्वारा देवकी को भेजे गए इस संदेश में दिया है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रही हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह जीवन का गुढ़ भाव है। तुलसी जैसे भावुक कभी ही इस गुढ़ भाव का आविष्कार कर सकते हैं। रस के संचारी भाव में विषाद का उल्लेख मिलता है। उदासीनता का नहीं, विषाद, करुण, विभत्स और श्रृंगार आदि कई रसों से संचारी बनकर आता है। उदासीनता का भाव विषाद की स्थिति का सूचक होने के कारण इन सभी रसों के साथ आ सकता है। उद्घातक गुणार्थक शब्द या वस्तु विशेष की स्पष्ट करने के लिए दो पात्रों के बीच में जो प्रश्नोत्तर माला का विधान किया जाता है उसे उद्घातक या उद्घात्यक कहते हैं। उदाहरण, प्रस्तावना के साथ उद्घातक, कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी गया। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। उद्दीपन विभाव का एक भेद जो स्थायी भाव को आस्वादन के योग्य बनाता है वह विभाव है। उद्दीपन विभाव भावों को उद्दीप्त या जागृत करता है। उदाहरण के लिए रति को रमणीय प्राकृतिक दृश्य या प्रेम पात्र के हाव भाव उद्दीप्त करते हैं, अतः उन्हें रति का उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। उदाहरण, प्रिय संबंधी आनंद के अनुभव की आशा देने वाले, एक प्रकार से उस आनंद को जगाने वाले उद्दीपन है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 51। उदाहरण, साहित्य के आचार्यों की दृष्टि में वन, उपवन, ऋतु आदि श्रृंगार के उद्दीपन मात्र हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 110। उन्माद वियोग की विफलता में जब नायक या नायिका जड़ चेतन में विवेक नहीं कर पाते तो उनको उन्माद की दशा होती है। उदाहरण, इस संबंध में मामूली तौर पर इतना ही कहना काफी समझा जा सकता है कि उन्माद की व्यंजना के लिए इस प्रकार का आचरण दिखाया जाता है। जैसी ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 41। उदाहरण, उन्माद नामक मानसिक अव्यवस्था, राग, शोक, क्रोध, भय आदि कई भावों की भाव दशा या स्थायी दशा के कारण उत्पन्न हो सकती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 225 से 26। उन्मिलित जहाँ कोई वस्तु समान लक्षण वाली दूसरी वस्तु से मिल नहीं पाती, मिलने की संभावना होने पर भी अपनी किसी विशेषता के कारण उन्मिलित या प्रकट हो जाती है और वहाँ उन्मिलित अलंकार होता है। उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई, जानी परेसिय हियरे जब कुमलाई, उन्मिलित अलंकार। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 98। उपचरित लक्षित लक्षणा से गृहित आरोपित। उदाहरण, क्रिया और गुण का अनुभव तीव्र कराने के लिए प्रस्तुत अप्रस्तुत के बीच या तो अनुगामी एक ही धर्म होता है या वस्तु प्रति वस्तु या उपचरित। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 362। उपचार सर्वथा भिन्न प्रतीत होने वाले दो पदार्थों में सादृश्य के अतिशय से अर्थात अत्यंत समानता होने के प्रभाव से भेद की प्रतीति न होने को उपचार कहते हैं। उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्य अतिशय महिमना भेद प्रतीत स्थगन मात्रम। साहित्य दर्पण पृष्ठ संख्या 11। उदाहरण, क्रिया और गुण का अनुभव तीव्र कराने के लिए प्रस्तुत अप्रस्तुत वस्तु के बीच या तो अनुगामी एक ही धर्म होता है या वस्तु प्रति वस्तु या उपचरित। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 99। उपन्यास गद्य में रचित लंबे आकार की काल्पनिक कथा जिसमें जीवन और जगत की यथार्थ एवं जटिल गतिविधियों को विश्वसनीय पात्रों के चरित्रों एवं कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उपन्यास कहलाती है। मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का यत्न करता है जिनसे मनुष्य का जीवन बनता है और जो इतिहास आदि की पहुंच के बाहर है। चिंतामणि भाग 3 पृष्ठ संख्या 102। उदाहरण, वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी उक्ति है। वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकता अनुसार उनके ठीक विन्यास, सुचार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 300 पृष्ठ संख्या 536। उदाहरण, उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाला पुराना ढांचा एकबागी छोड़ नहीं दिया गया। छोड़ा क्यों जाए, इसके भीतर हमारी भारतीय कथात्मक गद्य प्रबंधों जैसे कादंबरी हर्षचरित्र के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 540। उपपन्न, युक्तिपूर्ण, योग्य, प्रकरण संबद्ध। उदाहरण, जहां वाक्य या कथन में यह योग्यता, उपपन्नता या प्रकरण संबद्धता नहीं दिखाई पड़ती, वहां लक्षणा और व्यंजना नामक शक्तियों का आह्वान किया जाता है और योग्य अथवा प्रकरण संबंध अर्थ प्राप्त किया जाता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 162। उपमा, जहां एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य या साम्य प्रतिपादित किया जाता है और वैधर्म की कोई चर्चा न हो, वहां उपमा अलंकार होता है। साम्यम वाच्य वैधर्म्यम वाक्यम उपमाद्वयो, साहित्य दर्पण दशम परिच्छेद पृष्ठ संख्या 692। उदाहरण, एक नई उपमा देखिए। जब कोई राजा धनुष न तोड़ सका, तब जनक ने क्षोभ से भरे उत्तेजक वचन कहे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण को तो अमर्ष हुआ, पर अभिमानी राजाओं को यह दशा हुई। जनक वचन छुए वीरवा लजारू के से, वीर रहे सकल सकुच सिर नाई के। इस उपमा में लज्जा का उत्कर्ष भी है और क्रिया भी ठीक प्रतिबिंब है। यहाँ यह बहुत अच्छी है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 95। उपमा को ही लीजिए जिसका आधार होता है सादृश्य। यदि कहीं सादृश्य का उद्देश्य बोध कराना मात्र है, तो यह अलंकार काव्यालंकार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 93। उदाहरण, दृश्य वर्णन में उपमा उत्प्रेक्षा आदि का स्थान कितना गौड़ है, इसकी मनोविज्ञान की रीति से भी परीक्षा हो सकती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 128। उपलक्षण, लक्षित कराने वाले, निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का बोध कराने वाले चिन्ह। उदाहरण, कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश किया करते हैं। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल इत्यादि। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 340। उदाहरण, उन दृश्यों में जो सबसे अधिक मर्म स्पर्शी होता है, भाव कवि उसी को सबका उपलक्षण बनाकर स्थिति को हृदयंगम करा देता है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 70। उपादान, स्थूल कारण, वह भौतिकी सामग्री जिसे कोई कार्य हो, घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण है। उदाहरण, पर दुरारूढ़ वेदांत के अद्वैतवाद में ब्रह्म सब भेदों, स्वगत, सजातीय, विजातीय से रहित या जगत का निमित्त और उपादान दोनों माना जाता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 152। उपादान लक्षणा, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए जहां मुख्य अर्थ अपना अर्थ न छोड़ता हुआ दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है, वहां उपादान लक्षणा होती है। इसे अजहत लक्षणा भी कहते हैं। अजहत नहीं छोड़ा, स्वार्था स्व अर्थ नहीं छोड़ा है अपना अर्थ जिसने, वह अजहत स्वार्था लक्षणा होती है। उदाहरण, उपादान लक्षणा के उदाहरण हिंदी में कम मिलते हैं। देखिए उसका कैसा चलता उदाहरण इस दोहे में है, तुलसी बैर स्नेह दो रहित विलोचन चारी। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 106। उदाहरण, लक्षणा का पेट बहुत गहरा है, नए ढंगी कविताओं के भीतर यहाँ से वहां तक लक्षणाएं भरी मिलेंगी। उपादान लक्षणा भी, लक्षण लक्षणा भी। चिंतावणी भाग 2 पृष्ठ संख्या 224। उपासना, ध्यान, अमूर्त को मन में मूर्त करके उससे मानसिक सामिप्य का अनुभव करना, दूरस्थ वस्तु की भावना में तल्लीन होना ही उपासना है। उदाहरण, पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में ले आकर उसके सामिप्य का अनुभव करना ही उपासना है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 25। उपेंद्र वज्रा, यह 11 वर्णों का छंद है। इसमें क्रमशः जगड़ तगड़ मगड़, जगड़ तगड़ जगड़ तथा अंत में गुरु गुरु का विधान है। पांच छह पर यति होती है। इंद्र वज्रा के प्रथम वर्ण को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा बन जाता है। उदाहरण, इस बात का अनुभव तो बहुत से लोगों ने किया होगा कि संस्कृत के मंदाक्रांता, स्रग्धरा, मालिनी, शिखरिणी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा इत्यादि वर्ण वृंतों में नाच सौंदर्य की पराकाष्ठा है। चिंतामणि भाग दो, पृष्ठ संख्या 147। उल्लेख, जहां अनेक व्यक्ति एक वस्तु या व्यक्ति का अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, जहां एक व्यक्ति किसी एक वस्तु या व्यक्ति का उसके भिन्न भिन्न गुणों के कारण अनेक प्रकार से वर्णन करता है, वहां उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण, भिन्न भिन्न गुणों के आश्रितव्य से एक ही राम को गोस्वामी जी ने इतने विभिन्न, कहीं कहीं तो बिल्कुल विरुद्ध रूपों में उल्लेख के सहारे दिखाया है कि जो अलंकार सलंकार नहीं जानते वे इस राम की दिव्य विभूति समझ कर ही प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 97।